हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 14वां अध्याय श्लोक संख्या 4, 5, 6, 7 एंड 8। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोहीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं क्लेशं भक्तरूप स्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्जिनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु व्यतमिदं तत्राग्रहो न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधरुणबिम्बफल दरोष्ठा पुरेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं
किमपि तत्व अहम् न जानि यम् ब्रह्मावर्णेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये क्रमोपनिषदि गायन्ति यम् सामगा ध्यानावस्थित तत् कतेन मनसा पश्यन्ति यम् योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरकणा दीवायतस्मे नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद अध्याय 14 जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। जैसा कि हमने देखा युधिष्ठिर महाराज को जब नारद मुनि ने ये कहा कि तुम धृतराष्ट्र और गांधारी के विषय में इतना ज्यादा चिंतित हो, वास्तव में चिंता तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण संसार में आए थे जिस कार्य करने के लिए, वह कार्य लगभग उन्होंने समाप्त कर दिया है, अब बाकी कुछ ही शेष रह गया है। तो अब वो अंतिम कार्य करके इस पृथ्वी लोक से चले जाएंगे, तो उनके विषय में चिंता करो। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज का ध्यान भगवान श्री कृष्ण की ओर नारद मुनि ने किया तो उसे ऐसा लगा कि वाकई में कितना समय हो गया है, द्वारिका से कोई समाचार नहीं आया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जाओ देख के आओ कि द्वारिकाधीश कैसे हैं, द्वारिकावासी कैसे हैं, उनकी अगली गतिविधि क्या है, जाओ देख के आओ। तो अर्जुन जब वहां पर गए तो कुछ समय बीतने के बाद भी, 7 महीने बीत गए थे, उसके बाद भी उनका कोई समाचार नहीं आया, तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। और चिंतित होने के उपरांत उन्होंने देखा सृष्टि का पूरा जो नियम है वो भी उल्टा पुल्टा हो रहा है। हर जगह पे उनको अपशकुन दिखाई दे रहे थे, लोगों की मनोवृत्ति चेंज होने लगी, मनुष्यों के हृदय में लालच क्रोध और धोखेबाजी बढ़ने लगी, ऋतुओं का भी नियम जो था वो बदलने लगा, दूसरी ऋतु में दूसरा ऋतु का लक्षण प्रतीत होने लगा। तो युधिष्ठिर महाराज इन सारे अपशगुनों को देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वास्तव में भक्तों ये सब लक्षण कलयुग के थे, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण जो कि द्वापर युग के अवतार थे वो इस संसार से चले गए, अब कलयुग के आगमन के कारण यह सारे अपशकुन दिखाई दे रहे थे युधिष्ठिर महाराज को। और जब युग बदलता है तो जीवों की मनोवृत्ति स्वतः बदल जाती है और वो उस युग के अनुसार ही कार्य करते हैं। आगे सूत गोस्वामी श्लोक नंबर 4 में कहते हैं, जेहम प्रायम व्यवहृतम शार्यमिश्रम च सौहृदम पितृमातृ सुहृत् भ्रातृ दंपत्नीनां च कल्कनम जेहम प्रायम व्यवहृतम शाड्यमिश्रम च सौहृदम पितृमातृ सुहृत् भ्रातृ दंपत्नीना
దంపతీనాం చ కల్కనం జిహ్మ ప్రాయం వ్యవహృతం షాడ్యమిశ్రం చ సౌహృదం పితృమాతృ సుహృత్ భ్రాతృ దంపతీనాం చ కల్కనం.
శబ్దార్థ జిహ్మ ప్రాయం వ్యవహృతం. జిహ్మ ప్రాయం కా మతలబ్ హోతా హై హర్ కోయి హర్ బాత్ మే ధోకా దేనే లగా, క్యూంకి అబ్ భగవాన్ శ్రీకృష్ణ కి ఇస్ భౌతిక జగత్ మే హోనే కా యహ ప్రమాణ హై కి జీవ్ కే హృదయ మే స్వతః కహీన కహీ భగవాన్ కే లియే ప్రేమ్ హోతా హై ఔర్ భగవాన్ కే విషయ మే వో శ్రవణ్ కర్తా హై తో ఉస్కే పుణ్య అర్జిత్. లేకిన్ జైసే జైసే భగవాన్ కే విషయ మే సున్నా బంద్ హో జాతా హై, భగవాన్ సే సంబంధ్ టూట్నే లగ్తా హై, తో ఫిర్ జీవ్ కే హృదయ మే ये सब धोखा लालच ये सब उत्पन्न हो जाते हैं. तो वही बता रहे सुत गोस्वामी, जिहम अभ्रायम लोग धोखा देना शुरू हो गए थे, व्यवहारतम सारे जो समस्त सामान्य लेन देन होता था उसमें हर कोई दूसरे को धोखा ही देता था. और शाढ़्य मतलब द्वेदता, और मिश्रम का मतलब होता है अपमिश्रित, हर चीज में मिलावट होने लगी, धोखा होने लगा. च सौहृदम न केवल अपने दुश्मनों के साथ बल्कि मैत्रीपूर्ण शुभ चिंतकों और संबंधियों के साथ भी जीव धोखा देने लगा. कौन कौन से संबंधियों के साथ? पितृ मातृ सुहृद भ्राते, पितृ यानी पिता के साथ, बच्चे पिता के साथ, माता के साथ, अपने वेल विशर जो सुहृद थे शुभ चिंतकों के साथ, भातृ मतलब अपने सगे भाइयों के साथ, दंपति ना मतलब पति पत्नी से धोखा करने लगा, और पत्नी पति के साथ. अब मतलब जीवन का कोई संबंध जो है वो अप्योर नहीं रह गया. हर कोई संबंधी, दूसरे तो छोड़ो, शत्रु की तो बात ही नहीं यहाँ पर कहा जा रहा है, कि जो अपने सौहृदम थे, जो अपने मित्र थे, शुभचिंतक थे, वो भी एक दूसरे साथ धोखाबाजी करने लगे. और कल करना मतलब आपस में सदैव हर किसी के हृदय में एक दूसरे के साथ कलह करने का. ऐसा लगता था कि उसको नहीं आनंद मिलना चाहिए, उस लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं होने लगे जितने कि दूसरों के सुख को देखकर दुखी होने लगे. अनुवाद देखिए, सारे सामान्य लेन देन यहाँ तक के मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे. पारिवारिक मामले में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव भ्रम बना हुआ था. यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच में भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बद्ध जीव में चार दुर्गुण पाए जाते हैं. जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हमें यह हमारी बद्ध अवस्था होती है, क्योंकि आत्मा इस भौतिक प्रकृति के बने हुए शरीर के अंदर कैद होती है, तो इसको बद्ध जीव कहा जाता है. और इसके अंदर चार गलतियां होती हैं, चार दुर्गुण होते हैं. जो भी जीव इस संसार में है उसके अंदर ये चार त्रुटियां पाई जाती हैं. क्या होती हैं? वो गलतियां करता है, मूर्खता है उसके हृदय में, मतलब ज्ञान नहीं है उसके पास, और असमर्थता यानी कंप्लीट उसके पास सामर्थ्य नहीं है, तथा वंचकता यानी ठगी करता है वो, मतलब अपूर्ण इंद्रियां यानी कि उनकी इंद्रियों में पूर्ण सामर्थ्य नहीं है, और गलतियां करना. चाहे कोई कैसा भी बुद्धिमान क्यों न हो, जीव जब तक इस भौतिक जगत में है उससे गलती हो ही जाती है. अपूर्ण इंद्रियां, गलतियां करना, और मोहग्रस्त होना. मोहग्रस्त होना मतलब वो वास्तविकता को नहीं समझ सकता, मोहग्रस्त हो जाता है. बहुत सारी ऐसे उदाहरण है जैसे हम समझते हैं मोहग्रस्त हो जाती है हमारी इंद्रियां कि सही डिसीजन नहीं ले पाती. ठीक है, अपूर्ण इंद्रियां, गलतियां करना, मोहग्रस्त होना और धोखा देना, ये चार दुर्गुण हर एक जीव में पाए जाते हैं. ये अपूर्णता के लक्षण हैं, और इन चारों में से
ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। हर कोई एक दूसरे को ठगना चाहता है कि किस तरह से उसको ठग कर मैं अपना स्वार्थ पूरा करूं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छा से ओतप्रोत होते हैं। वास्तव में जीव के अंदर ठगी का या मूर्खता का या मतलब मोहग्रस्त होना, ये अपूर्ण इंद्रियां, ये वास्तव में जीव की क्वालिटीज नहीं है। जीव तो वास्तव में शुद्ध है और शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता है, क्योंकि इस अवस्था में उसे यह ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष भगवान के अधीन है और इस तरह अधीन बने रहना उसके हित में है, बजाय इसके कि वह परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुत्वता जताए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि अगर हम अपने वास्तविक अस्तित्व से ज्ञात रहेंगे कि हम तो भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करना है, हम आत्मा हैं, और तभी संतुष्ट रह सकते हैं जब हम कृष्ण को प्रसन्न करें। यदि यह बात हम जान लेते हैं तो हम बद्ध अवस्था में नहीं है। फिर भले भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी ये सब जो भौतिक प्रकृति के दुर्गुण है वो हम पर अटैक नहीं करते, लेकिन जब जीव अपनी वास्तविकता को भूल जाता है और प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, इस प्रकृति के द्वारा अपने इस भौतिक शरीर को संतुष्ट करना चाहता है, और ये अप्राकृतिक इच्छा है, ऐसा हो भी नहीं सकता है, तो जब ऐसा होने लगता है, वो ऐसा चाहता है, इच्छा करता है, तो फिर उसके अंदर यह दुर्गुण आ जाते हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हमारे हित में क्या है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानें और भगवान की अधीनता को स्वीकार करें। शुद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए जो वह चाहता है तो भी वह बद्ध अवस्था में जब उसे सर्वस्व मिल जाए जो चाहता है तो भी वह संतुष्ट नहीं होता, अतः वह सभी प्रकार की ठगी करने लगता है, यहाँ तक कि वह अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता रहता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 2.70 में बोलते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्त्वत् तत्त्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे न शांतिमाप्नोति न काम कामी। कि वास्तव में यदि आपको शांति प्राप्त करनी है तो उन इच्छाओं को जो तुम्हारे हृदय में इच्छाएं आई हैं उनको पूरी करके शांति प्राप्त नहीं होगी। यही बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व भी मिल जाए, जो कुछ वो चाहता है, तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता है, अतएव वो क्या करने लगता है, सब प्रकार से ठगी करना चाहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि काम इच्छा वह अग्नि है जिसमें काम इच्छा को पूरा करने का जितना भी ईंधन डालेंगे वो उतनी ही भड़कती जाएगी। तो वो क्या करने लगता है, ठगी करने लगता है, ना केवल शत्रुओं के साथ बल्कि निकटतम प्रिय संबंधियों के साथ। ऐसा असंतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति तथा पत्नी के बीच मेल नहीं रह पाता, लेकिन इन विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है। अब श्रील प्रभुपाद जी इनका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि हृदय के अंदर जो ये अपवित्रता आ गई है, असंतोष आ गया है, उसको एक विधि के द्वारा दूर किया जाता है, और वह विधि है भगवान की भक्ति। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, यदि हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, तो हृदय को हृदय उसे पवित्र हो जाता है। महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, वास्तव में सारे अपराध करने की वजह क्या है, हृदय मलिन है, और जब हृदय मलिन है तो जीव जो है वो अपवित्र सोचने लगता है, अपवित्र कार्य करने लगता है। तो इसके लिए कार्य को बंद करने से कुछ नहीं होगा, हम एक दिन गलत कार्य करने से खुद को रोकेंगे, दूसरे दिन रोकेंगे, लेकिन क्योंकि हृदय के अंदर वो जड़ बनी हुई है ना, तो जड़ बने हुए के कारण वो पौधा, जहरीला पौधा कभी ना कभी ऊपर उठेगा। लेकिन यदि जड़ निकाल दी जाए, हृदय को पवित्र कर दिया जाए, तो पौधा कभी नहीं उगेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वास्तव में यदि इन समस्त कठिनाइयों को दूर करना है तो उसकी विधि क्या है? भगवान की भक्ति। पाखंड में संसार को भगवान की भक्ति की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार का वैषम्य देखा तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस धरती से भगवान का विलोप हो चुका है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर रीति से इन समस्त समस्याओं का समाधान बताया। वास्तव में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, पूरे विश्व में जो ये धोखा, लालच, क्रोध, हिंसा भरी हुई है, उसका एक ही समाधान है कि जीव भगवान की भक्ति करे। ये सब जो धोखा होता है, लालच होता है, दगा होती है, एक दूसरे के साथ ठगी किया जाता है, उसका कारण क्या है? कि संसार में कृष्ण भावना का अभाव है। यदि जीव कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो हृदय की गंदगी दूर हो जाती है और जीव पवित्र हो जाता है, शुद्ध मन से शुद्ध कार्य होते हैं। इसे यदि इस भौतिक जगत के इन समस्त कलमशों को दूर करना है तो उसका एक ही उपाय है कि हमें भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, उससे हृदय पवित्र होगा। और जब हृदय पवित्र होगा तो जीव कोई गलत कार्य नहीं करेगा। आगे कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा कि इतने अपराध हो रहे हैं संसार में, तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि भगवान कहीं संसार से चले तो नहीं गए, क्योंकि अभी तक तो अर्जुन पता वापस आया नहीं ना पता लगा के। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं, निमित्तान्यत्यरिष्ठानि काले त्वनु गति निर्णाम लोभाद्य धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजम नृपः। निमित्तान्यत्यरिष्ठानि काले त्वनु गति निर्णाम लोभाद्य धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजम नृपः। जब राजा युधिष्ठिर ने देखा कि काल क्रम में ऐसा ऐसे अपशकुन उत्पन्न हो रहे हैं, जीवों के हृदय में इतना लोभ है, लालच है, माता पिता भाई बंधु सब एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, एक दूसरे को छलने के लिए, एक दूसरे को धोखा देने के लिए, हर एक जीव जो है वो केवल अपना भला चाह रहा है और दूसरे को धोखा देकर उसको हानि पहुंचाना चाह रहा है, हर किसी के हृदय में झगड़ा है, तनाव है, तो फिर उन्होंने क्या किया? निमित्तान्य यरिष्ठानि काले सनुगते नृणाम। जब ये अति अरिष्ठानि बहुत ज्यादा अपशकुन, बहुत ज्यादा अशुभ लक्षण जब उन्होंने देखे काले इस काल क्रम में, तो उन्होंने के अनुगते निर्णाम कि मानवता से सभ्यता चली गई, क्या आ गया उसके बदले में? लोभाद्य धर्म प्रकृति, लोभ आदि यानी कि लोभ, लालच, धोखा, जालबाजी ये सब आ गए, अधर्म उनके हृदय में आ गया और उनकी आदतें जो थी प्रकृति, उनकी आदतें देखकर महाराज युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी हुए। और उन्होंने क्या किया जब उन्होंने देखा? तो अनुजम नृप अपने छोटे भाई, उनके छोटे भाई कौन थे? भीमसेन, उसको नृप मतलब राजा ने उनको कहा, अनुवाद देखिए, कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व आदि के आदि हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब समाज में लोभ, क्रोध, अधर्म तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षण का प्राधान्य हो उठा, तो महाराज युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। इस
कथन से ऐसा प्रतीत हुआ है होता है कि पतित समाज के ये लक्षण उस काल के लोगों को अज्ञात थे और कलयुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक था। यानी इससे पहले ऐसा नहीं था। भले ही दुर्योधन आदि द्वापर युग में थे, लेकिन फिर भी अब जो लक्षण, जैसे उस समय क्या होता था कि भाई कुछ लोग के हृदय में ऐसा होता, लेकिन अब लोगों की प्रकृति चेंज हो गई, सबका स्वभाव ऐसा हो गया, हर कोई ऐसा होने लगा, तो फिर युधिष्ठिर महाराज जो थे वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। और क्योंकि अधर्मियों का तो भगवान ने नाश कर दिया था, जब सारे अधर्मी उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में नष्ट हो गए, अब अच्छे लोग जो रह गए थे वो भी ऐसे मतलब आपस में कर रहे थे, धोखा कर रहे थे, लालच था सबके हृदय में, सबके हृदय में एक दूसरे के साथ झगड़ा तनाव था, तो उससे जो था युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने भीमसेन से कहा, क्या कहा, युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकाया जिष्णुर्बन्धु दिदीक्षया ज्ञातुं च पुण्यशोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् संप्रेषितो द्वारकाया जिष्णुर्बन्धु दिदीक्षया ज्ञातुं च पुण्यशोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् कि संप्रेषितो द्वारिकायां, उसने भीमसेन से कहा कि अर्जुन द्वारिका गया है, मैंने उसको भेजा है, क्यों भेजा है, बंधु दिदीक्षया, कि हमारे जो द्वारिका वासी जो हमारे बंधु हैं अर्थात कृष्ण और दूसरे द्वारिका वासी, तो ज्ञातुम जो पुण्य श्लोक से उनको, बंधुओं को और पुण्य श्लोक अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मिलकर आए और उनकी आगे गतिविधि क्या है उसके विषय में जानकर आए, मैंने उनको भेजा था। अनुवाद देखिए, महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारिका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता है कि आगे वो क्या करना चाहते हैं, तो इतना। लेकिन फिर आगे कहते हैं, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतु नाहं वेदिदमञ्जसा गता सप्ता धुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतु नाहं वेदिदमञ्जसा गता सप्ताधुना, सप्ताधुना मतलब सात, अधुना मतलब इस समय तक, अभी जो है सात महीने बीत चुके हैं, सप्ताधुना मासा मतलब सात महीने बीत चुके हैं, भीमसेन तवाजुना यानी आपके छोटे भाई, हे भीमसेन आपके छोटे भाई अर्जुन जो है उनको गए हुए सात महीने बीत गए हैं, नायाति कस्य वा, लेकिन फिर भी वो नहीं आए हैं अभी तक, ना आयाति अभी तक नहीं आए हैं, कस्य वा हेतु, ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको इतना समय कैसे लग गया, कस्य वा हेतु कारण क्या है, ना अहम वो मैं नहीं जानता, वेद मतलब मैं नहीं जानता, इदम अंजसा वास्तव में मैंने तो उनको भेजा था कि जल्दी भगवान का भगवान के विषय में जानकर और भगवान का अगला कार्यक्रम जानकर जल्दी मेरे पास आना, मुझे बताना ताकि उसी हिसाब से मैं आगे के विषय में ना तैयारी करूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, हे तो ना हम वेद रमंजसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वास्तव में उसको इतना समय क्यों लग गया, सात महीने क्यों बीत गया। अनुवाद देखिए, जब से वह गया है सात मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं है, मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। आगे युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा दुखी होकर अपना एक संदेह प्रकट करते हुए भीमसेन से कहते हैं, अपि देवर्षिनादिष्ट
सकालोयम् उपस्थितः यदात्मनुङ्गमा क्रीडम् भगवान् उत्सि शिक्षति अपि देवशिरादिष्टिः सकालोयम् उपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमा क्रीडम् भगवान् उत्सि शिक्षति विकेते अपि देवर्षिणादिष्टि सकालोयम् उपस्थितः जो देवर्षि नारद अपि मतलब क्या मतलब अपना संदेह पेश कर रहे हैं क्या देवर्षि नारद आदिष्टि जो देवर्षि नारद ने जो बताया था कि भगवान जाने वाले हैं सकालोयम् उपस्थितः ऐसा लग रहा है वही काल आ गया है। यदात्मनोऽङ्गमा क्रीडम् ऐसा लगता है कि जब भगवान अपने इस जो आक्रीडम यानी जो प्राकट्य था उसको समेट के भगवान उससे शिक्षता भगवान ये भौतिक जगत को छोड़कर चले गए क्योंकि इतने अपशकुन होते हैं ये संसार जो है वो अब मनोहर नहीं लग रहा है। ये हर जगह धोखा दिख रहा है लालच दिख रहा है कहीं पर अच्छा कुछ दिख ही नहीं रहा है। वास्तव में भक्तों भगवान जिस जगह पर होते हैं ना वहीं पर आनंद है वहीं पर सुख है और जो जगह को भगवान छोड़कर चले गए हो तो प्रकृति जो है वो दुखदायक लगती है भक्तों को। वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब गोपियां कहती हैं कि आपके जन्म के कारण जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वदत कि आपके जन्म के कारण ही तो गौलोक गोकुल वृंदावन नाम गौलोक से भी अधिक महत्वपूर्ण अधिक सुशोभित लगने लगा है। हर एक वस्तु जो है वो ऐसा लगता था जैसे भगवान के आने के कारण आनंदमय हो गई है और जो वैकुंठ की जो लक्ष्मी है वो भी वहां पर ब्रज वृंदावन धाम में आ गई थी क्योंकि अब जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में हैं तो फिर इंद्रा यानी लक्ष्मी देवी और समस्त देवी देवता बस यहीं पर आकर अपना डेरा जमाए हुए थे क्योंकि अब दूसरे किसी आध्यात्मिक जगत में कुछ और ऐसा नहीं है जिसके लिए वो वहां पर बैठे होते। तो भगवान जब इस संसार में थे तब सारे शुभ लक्षण सारे शुभ शकुन होते थे लेकिन जैसे भगवान इस संसार से चले गए तो पूरा जो ये पूरी प्रकृति जो है वो बिल्कुल मनुष्य जैसी लग रही थी। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख हो रहा था। वो कह रहे थे कि नारद जी ने तो कहा था वो समय आने वाला है लेकिन मुझे ऐसी आशंका हो रही है कि क्या वो समय पहले से आ चुका है। अनुवाद देखिए, क्या आपने मृत्यु लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं? क्या वे अपनी मृत्यु लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं जैसा कि देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय पहले ही आ चुका है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि हम कई बार बतला चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कई अंश हैं और इनमें से यद्यपि प्रत्येक समान रूप से शक्तिमान है किंतु वह भिन्न भिन्न कार्य करता है। जिस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई तरह से कथन है और इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशांशों के लिए है। उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अब देखो यहाँ पर श्री रूपा जी भगवान ने भगवत गीता में जो जो कथन किए हैं वो किस तरह से कौन से अंश के विषय में है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं। श्री रूपा जी कहते हैं भगवान के बहुत सारे अंश हैं, संख्य अंश हैं भगवान के और इनमें से यद्यपि प्रत्येक समान रूप से शक्तिमान है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। 4.7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्।
जब जब धर्म की आनी होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं आता हूँ। इसका मतलब है भगवान युग अवतार के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कि जब जब धर्म की हानि होगी भगवान श्री कृष्ण के ही रूप में आएंगे। कभी वो राम बनकर आते हैं तो कभी परशुराम बनकर आते हैं तो कभी वामन और कभी हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह बनकर आते हैं। तो भगवान का कोई ना कोई अंश स्वरूप आता है। और भगवान आगे 4.8 में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। मैं हर युग में प्रकट होता हूँ भक्तजनों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो भगवान युग युग के बारे में बता रहे हैं, हर युग में। जैसे सत्ययुग में आएंगे भगवान मत्स्य रूप में, उसके बाद त्रेता युग में श्री राम के रूप में, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में, और कलयुग में कल्की के रूप में। तो ये युग युग की बात भगवान ने बताई। लेकिन भगवान आगे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता 3.24 में, यदि मैं कर्म ना करूं तो सारे लोग कुपथगामी हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण बनूं और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करता बनूं। तो यहाँ पर भगवान जो है वो अपने जो भी कार्य जिसमें जैसे श्री राम के अवतार में उन्होंने सारे मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे कार्य किए, तो भगवान बता रहे हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आता हूँ इसलिए ताकि लोग मेरा अनुसरण करें। क्योंकि यदि मैं लोगों को नहीं बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने कर्तव्यों को पूरा करना है तो सारे लोग कुपथ कामी हो जाएंगे, यानी गलत कार्य करने लगेंगे और सारा जन सामान्य जो है वो अपवित्र होने लगेगा, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी और संपूर्ण प्राणियों की शांति का सर्वनाश हो जाएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण 3.21 में कहते हैं कि यद्यद्याचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो, जो महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्य से जो भी आदेश प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। तो महापुरुष मतलब आप भगवान किसी भी स्वरूप में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान भगवान के रूप में ही आए, लेकिन किसी जैसे गुरु के रूप में आते हैं या किसी संत के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भक्त के रूप में। तो जो जो आचरण वो करते हैं तो सब लोग उसका अनुसरण करते हैं ताकि सब लोगों को, जब हम बड़ों का या शुद्ध भक्तों का अनुसरण करेंगे तभी हमारा जीवन जो है वो पवित्र होगा। तो भगवान का हर कथन जो है वो उनके अंश और अंशांश के विषय में होता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उपर्युक्त सारे कथन भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं, यथा संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा नारायण। इन सब दिव्य अंशों में वे स्वयं ही हैं। अब भगवान के जो ये प्रथम प्राकट्य हैं शंकरषण वासुदेव प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये सब जो हैं भगवान के अंश दिव्य अंशों में भगवान स्वयं ही हैं। फिर भी कृष्ण के रूप में भगवान अपने विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार का दिव्य आदान प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर भगवान के इस कृष्ण स्वरूप को अन्य समस्त स्वरूपों से विलग करके श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दूसरे जितने भी अवतार होते हैं भगवान के अंश होते हैं वो भी स्वयं भगवान ही हैं, वो भी भगवान ही के समान है, शक्तिमान है, परंतु भगवान कृष्ण के रूप में जो अपने भक्तों के साथ अपने प्रेमियों के साथ आदान प्रदान करते हैं वो बिल्कुल विभिन्न प्रकार का होता है। ऐसा और किसी दूसरे किसी अवतार में भगवान अपने मित्रों के साथ पग्गी नहीं देते, वो देते ना कि जैसे जब लड़ते हैं ना, सॉरी जब कोई भी गेम खेलते हैं। एक बारी क्या हुआ, भगवान के सब सखा खेल रहे थे और जब गेम खेली तो जो भी आउट हो जाता था ना उसको घोड़ा बनना पड़ता था और जो जीतता था वो उसके ऊपर घुड़सवार बनकर सवारी करता था। अब सब भारी भारी हारने लगे, पहले मधुमंगल हारा, फिर वो घोड़ा बना और कृष्ण उस पर सवारी कर रहे थे, उसके बाद मनसुखा हारा
तो उसके ऊपर सवारी की। इस तरह धीरे धीरे करके सारे जो सखा थे वो हार रहे थे और कृष्ण उनके ऊपर सवारी कर रहे थे। फिर क्या हुआ, भगवान सखा रस का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर जैसे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भगवान इस रूप में विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार के दिव्य रस का आदान प्रदान करते हैं। तो फिर अब कृष्ण आउट हो गए और कृष्ण को सबने कहा, चलो कृष्ण घोड़ा बनो, अभी हम तुम्हारे ऊपर सवारी करेंगे। कृष्ण बोले, मैं घोड़ा बनो, मैं तो यहाँ का राजा हूँ। तुम जानते नहीं मेरे पिता नंद महाराज राजा हैं और मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तब सब ने कहा, देखो कृष्णा, ये जो राजा राजा के पुत्र हो ना, वो सब तुम अपने घर पे होगे, यहाँ पर सब इक्वल हैं, तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा। तो फिर कृष्ण ने कहा, मैं नहीं बनूंगा घोड़ा, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। तो बोला, हम वैसे भी तुम्हारे जैसे धोखेबाज को खिलाएंगे भी नहीं, अब हमारे साथ कभी भी खेलने मत आना। अगर तुम खेलना चाहते हो ना हमारे साथ, तो तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा, वरना तुम निकलो हमारी टीम से, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। तो कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ, मुझे भी नहीं खेलना तुम्हारे साथ। फिर कृष्ण चले गए। बहुत देर तक बैठे बैठे सब खेल रहे हैं, वो देख रहे हैं, कितने देर से कृष्ण को दिल भी कर रहा था कि मैं खेलूं। फिर दाऊ को कहा, देखो दाऊ मुझे खिला नहीं रहे हैं। तो कृष्ण दाऊ ने कहा, जाहिर सी बात है, तुम इतनी बेईमानी करोगे तो तुम्हें कौन खिलाएगा, अब तुम्हारा घोड़ा बनने का समय आया तो तुम घोड़ा भी नहीं बन रहे हो। तो फिर कृष्ण ने कहा, अच्छा फिर घोड़ा बनता हूँ। बोला, बनते हो तो चलो ठीक है, आ जाओ घोड़ा बनो। फिर कृष्ण जब आउट हो गए थे तो घोड़ा बन रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था, मैं क्यों घोड़ा बनूं, मुझे क्यों ये ना पनिश कर घोड़े बनना पड़ रहा है। तो फिर भी है ना, थोड़ा घोड़ा बनने के बाद आगे तक चले और आगे जाकर उसको गिरा दिया, जो उसके ऊपर बैठा था ना उसको गिरा दिया। फिर उसने कहा, देखा ये हमेशा ऐसे ही करता है, इसके साथ तो हमें खेलना ही नहीं, निकलो बस, हम आपको अपनी टीम में रख ही नहीं रहे। फिर कृष्ण को वापस से निकाल दिया। फिर क्या हुआ, कृष्ण उधर जाके मट्टी खाने लगा। फिर कृष्ण को सब देख रहे, अभी कृष्ण मट्टी खा रहा है, दाऊ भैया देखो कृष्ण मट्टी खा रहा है, दाऊ भैया। तो सब आके कृष्ण को रोक रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण मट्टी नहीं खाओ, हम यशोदा मैया से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम मट्टी खाते हो। तो फिर है ना, कृष्ण ने कहा, देखो तुम लोग अपना खेल रहे हो ना, मैं अपना खेल रहा हूँ, तुम लोग मुझे आकर तंग मत करो, जो मेरी जो मर्जी आएगी वो करूंगा, जिसे बताना ना जाके बता दो। फिर क्या हुआ, सारे दोस्त गए और यशोदा मैया को बताया, यशोदा मैया आपका कान्हा मट्टी खा रहा है। और उसके बाद क्या हुआ वो तो सब आप जानते हैं। भारत यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण अपने कृष्ण स्वरूप में जितने भी प्रकार के उनके भक्त हैं उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। वास्तव में यदि किसी ने मित्रता या संबंध निभाना और उस संबंध को निभाने के लिए हर एक परीक्षा को पूरा करना अगर किसी ने दिखाया है, किसी रूप में भगवान ने दिखाया है, तो वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसे शास्त्र कहता है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाही निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनकी चपल विशेष। वैसे तो राम और कृष्ण उनमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही हैं, परंतु अंतर है केवल नेत्रों का। उनके नेत्र बहुत ही गंभीर हैं, अर्थात श्री राम जी के नयन बहुत गंभीर हैं, और इनके तो कभी भी सीधा देखते, हम देखते हैं श्री राम जी जब भी होंगे ना, सीधा देखेंगे, सीधा चलेंगे, सीधा बोलेंगे, और ये कृष्ण जो है ना वो टेढ़ा देखेंगे, टेढ़ा चलेंगे, खड़े भी होंगे तो भी टेढ़ा ही खड़े होंगे, तीन जगह से टेढ़े होंगे वो, इसीलिए इनको त्रिभंग बोला जाता, त्रिभंग ललित। और वृंदावन में तो उनका नाम ही बांके बिहारी रख दिया कि बांके हैं वो, टेढ़े हैं, सदैव टेढ़े। एक बारी क्या हुआ, जब भगवान श्री राम सीता मैया के साथ वन में रहते थे, उस समय शूर्पणखा जो कि रावण की बहन थी,
वो अत्यंत ही सुंदर स्वरूप धारण करके भगवान श्री राम के पास आई और उनसे कहने लगी कि इस संसार में मुझसे अधिक सुंदर और कोई स्त्री नहीं है और मैं अपने योग्य पुरुष की तलाश कर रही थी। मुझे आज तक कोई भी मेरे तुल्य सुंदर पुरुष दिखाई नहीं दिया और आज मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे हृदय में ऐसी आवाज आई कि तुमसे अधिक सुंदर और कोई पुरुष नहीं है, तो हम दोनों का मिलन होना चाहिए। तुम सर्व सुंदर पुरुष हो और मैं सर्व सुंदरी स्त्री हूँ, तो फिर हमारा मिलन होना चाहिए, तुम मुझसे विवाह कर लो। तब श्री राम ने कहा कि देखो, वैसे तो तुम्हारा प्रस्ताव बुरा नहीं है, लेकिन मैं एक पत्नी व्रता हूँ और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है, वो सामने मेरा भाई है ना, जाओ उससे अपना प्रस्ताव रखो, वो भी बहुत सुंदर है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। तो शूर्पणखा गई लक्ष्मण जी के पास और कहा कि तुम्हारा भाई बहुत मूर्ख है, उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु तुम भी कम सुंदर नहीं हो, तुम युवा हो, सुंदर हो, बलवान हो और मुझसे जैसी सुंदरी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, तुम उससे विवाह करो। तब लक्ष्मण ने कहा, वैसे तो तुम्हारा प्रस्ताव बुरा नहीं है, परंतु मुझे तुम्हारी मूर्खता पर बहुत दुख हो रहा है। कहाँ तुम अभी रानी बनने वाली थी और अभी कहाँ दासी बनने का सपना देख रही हो। बोले ये मेरा जो भाई है वो राजा है और मैं तो उसका सेवक हूँ, मैं सदैव सेवा करता रहता हूँ। अगर तुम्हें तुम मेरे पास मुझसे विवाह करोगे तो फिर तुम्हें भी सेवा करनी पड़ेगी, तुम कुछ भी करके जाओ उसी के साथ विवाह करो, उसके साथ उसका विवाह तुम्हारे साथ हो गया तो तुम राज करो कि राज। तो फिर वापस से शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास गई और उनसे इतना अनुनय विनय कर रही थी कि तुम मुझसे विवाह कर लो, मुझसे विवाह कर लो, परंतु श्री राम मान ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा हमेशा लगता है कि अगर कृष्णा होते तो क्या कहते, पता है, वो बोलते अच्छा तुम्हें मुझसे विवाह करना है, आ जाओ मैं तुमसे विवाह कर लेता हूँ, तुम्हारी अगर दो चार बहनें हैं तो उनको भी साथ में ले जाओ, लेके आओ, और अगर कोई सखियों का भी ऐसा कोई प्रोग्राम है मुझसे विवाह करने का तो उनको भी लेके आओ, मैं सबके साथ विवाह करने के लिए तैयार। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवान श्री कृष्ण रूप में जो संसार में आए हैं वो अपने विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, कि उनके ऊपर कोई मर्यादा नहीं थी, वो केवल जीव का भाव देखकर उनको स्वीकार कर रहे थे कि बस वो मेरे पास आया है किसी भी इच्छा लेकर, तो उसको स्वीकार करते थे। इसी प्रकार दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे उन सब ने भगवान श्री कृष्ण को जब श्री राम को देखा वहाँ दंडकारण्य में, जब श्री राम आए तो उनकी ही सुंदरता को, उनके स्वरूप को देखकर सारे ऋषि मुनि मोहित हो गए और उनकी इच्छा होने लगी कि ये हमारा स्वामी बने, हम इनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करें। तो सारे ऋषि मुनियों अपने तपस्या के बल पर स्त्रियां बन गई और श्री राम से अपने हृदय की बात कही, परंतु श्री राम ने उस समय कहा कि देखो, इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, अगले युग में जब द्वापर में कृष्ण स्वरूप में आऊंगा ना, तब तुम सबकी इच्छा पूरी करूंगा। तो यही बात यहाँ प्रश्न प्रभुपाद जी बता रहे कि तो भी भगवान कृष्ण यथा रूप से ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटों में या 8,64,00,000 वर्षों के बाद, यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो 12 घंटे होते हैं वो 4,32,00,000 के होते हैं और उतनी ही मुद्दत की ब्रह्मा जी की रात होती है, यानी 4,32,00,000 का दिन और 4,32,00,000 वर्षों की रात, तो 8,64,64,00,000 वर्ष जब बीतते हैं तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार दिखाई देते हैं, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड एक दिने एक बार, यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, उनकी दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती हैं, किंतु अनजाने व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव आदि के कार्य
जटिल समस्याएं बन जाते हैं। साधारण जीव जो है वो इनको समझते नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। साक्षात भगवान तथा भगवान के दिव्य शरीर में कोई अंतर नहीं है। विभिन्न अंश तरह तरह के कार्य संपन्न करते हैं, किंतु जब भगवान सशरीर कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं तो अन्य अंश भी उनकी अचिंत्य शक्ति अर्थात योग माया से उनके साथ हो लेते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कब अवतार लेते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। ब्रह्मा जी के एक दिन में हजार बार चतुर्युगी घूमती है। ये जो चतुर सहस्त्र जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं 8.17 में भगवान बताते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम ते हरो ते हो रात्र विदो जना के। मानवीय जो गणना है उसके अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। तो 1000 युग के अंदर एक दिन, इसी एक दिन के अंदर भगवान को एक बार अवतार लेना है। और जब 28वीं चतुर्युगी होती है यानी 27वीं चतुर्युगी बीत जाती है, जो 28वां चतुर्युग होता है उसके द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। और उसी उसके अलावा जो दूसरे द्वापर युग होते हैं ना उसमें भगवान के अंश अवतार लेते हैं, लेकिन जो 28वां चतुर्युग होता है उसके द्वापर में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि उसी 28वें चतुर्युग में यानी कि जो 28वां चतुर्युग है उसका जो कलयुग अभी अभी रिसेंट जो द्वापर युग बीता है उसी में भगवान श्री कृष्ण साक्षात अवतरित हुए थे। इसीलिए देखो सब कितना नवीन लगता है, जैसे वृंदावन जाते हैं हम, मथुरा जाते हैं, तो वो सारे सिम्टम्स जो भगवान के थे अभी तक वो सारी जगह वो सारी भगवान की यादें अभी तक कितनी सेफ है, क्योंकि अभी अभी जो युग बीता वो अभी अभी भगवान साक्षात इस संसार में आए थे। और उससे बड़ा सौभाग्य कि जैसे ही वो 28वां चतुर्युग का द्वापर युग समाप्त होता है उसके बाद जो कलयुग आता है उसी में साक्षात चैतन्य महाप्रभु आते हैं। सारे कलयुगों में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, सिर्फ 28वां, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि सहस्त्र युग पर्यंत अहर्यत ब्रह्म, एक युग में एक बार, जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के प्रत्येक 24 घंटे में या 8 अरब 64 करोड़ वर्षों में प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार भगवान आते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि वही युग चल रहा है। और जब भगवान साक्षात संसार में आते हैं तो योग माया भी उनके साथ होती है। इसलिए इस प्रकार वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण या मथुरा या द्वारिका के श्री कृष्ण से भिन्न है। अब ये बहुत ही सीक्रेट बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो वृंदावन के भगवान हैं वो मथुरा और द्वारिका के भगवान श्री कृष्ण से भिन्न है, क्योंकि वृंदावन के जो भगवान है उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, कि वृंदावन को त्याग कर मैं एक कदम भी कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। तो फिर मथुरा में कहां से आए भगवान? और उसके अलावा शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण कभी किसी का वध नहीं करते, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि भगवान ने तो पैदा होते ही राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही भागवतम में इसको इतना डिटेल से नहीं बताया गया, लेकिन कृष्णदास कविराज महाराज चैतन्य चरितामृत में बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही विस्तार से इस चीज को बहुत ही इस रहस्य को बताते हैं कि जो वृंदावन के हैं वो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण सदैव वृंदावन में रहते हैं, लेकिन जो उनके साथ विष्णु तत्व आते हैं, जैसे जब भगवान का जन्म हुआ था तो जेल में विष्णु तत्व मथुरा की जेल में जो उत्पन्न हुए थे वो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, वो विष्णु तत्व थे। और यशोदा मैया को जो उत्पन्न हुए थे, एक तो कन्या उत्पन्न हुई थी और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन उत्पन्न हुए थे जो किसी को नहीं दिखे, क्योंकि योग माया ने उस पर अपना पर्दा डाल दिया था तो नहीं दिख रहे थे। और जैसे ही वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के विष्णु तत्व को वहां पर लेकर आए तो वहां पर यशोदा मैया के पास जो कृष्ण साक्षात थे उनके साथ मिलकर एक हो गए। तो जो वध कर रहे थे राक्षसों का वो विष्णु तत्व थे और जो भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे थे वो कृष्ण तत्व। लेकिन जब अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन में आए थे और कृष्ण को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में स्नान किया और उनके स्नान करने के बाद अक्रूर जी ने स्नान किया तो अक्रूर जी को अंदर भी भगवान श्री कृष्ण दिखे और बाहर भी दिखे, यानी कि यमुना जी में जो कृष्ण दिखे वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन थे और जो बाहर थे वो विष्णु तत्व जा रहे थे। मतलब इसी बात को यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मथुरा और द्वारिका के कृष्ण हैं वो वृंदावन के भगवान से भिन्न हैं। इसी तरह कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप का भौतिक बोध था। ये जो विराट स्वरूप है वो भी साक्षात भगवान का रियल स्वरूप नहीं है। रियल स्वरूप कौन सा है? ब्रह्मा जी बताते हैं, वैणुम कोणंतम अरविंद दलाय तक्षम, जो बांसुरी बजाते हैं और जिनके नेत्र कमल के पंखड़ियों के जैसे हैं, जो मोर पंख लगाते हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं और नीले बादलों के जैसा जिनका स्वरूप है, वही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण है। अतएव यह समझ लेना चाहिए कि जब बहेलिया के तीर कमान से भगवान श्री कृष्ण मारे गए थे तो भगवान अपना तथा कथित भौतिक शरीर इसी संसार में छोड़ते गए। भगवान तो कैवल्य हैं और उनके लिए पदार्थ या तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न है। अतएव उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरा शरीर ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं है कि वे सामान्य जीव हैं। ऐसे सारे कार्यकलाप उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण एक ही साथ एक ही तथा भिन्न भिन्न है। जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर्दान होने की संभावना से शोक आकुल थे तो यह अपने परम मित्र के अंतर्धान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, जैसा कि ब्रह्मवश अल्पज्ञानी लोग सोचते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है और वे मूढ़ कहलाते हैं। भगवान के शरीर त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने अपने नामों में छोड़ दिया, जिस तरह इस संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से भगवान के संसार में आने और अपने विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ आदान प्रदान के विषय में बताने के बाद उनके अंतर्दान होने के विषय में बता रहे हैं कि भगवान का अंतर्दान ऐसा नहीं होता है कि भगवान जो है वो हम जैसे जीवों की तरह अपना शरीर छोड़कर जाते हैं और आत्मा को लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं। भगवान के अंदर आत्मा और शरीर का भेद नहीं है। भगवान कैवल्य, जैसे हमने कुंती महारानी की स्तुति में पढ़ा था, नमः कैवल्य नाथाय, वो कैवल्य हैं, अर्थात उनके अंदर शरीर और आत्मा का भेद नहीं है, लेकिन वो इस संसार में आते हैं, अपने कार्य करते हैं, जो उनके कार्य होते हैं, जो सोच कर आते हैं कि ये मुझे करने हैं, किस प्रकार से अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, और उसके बाद पुनः अपने गौलोक वृंदावन धाम में चले जाते हैं और उनके साथ जो स्वांश आए थे, उनके जो उनके साथ वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न इत्यादि बलदेव संकर्षण ये सब आए थे, वो अपने अपने लोकों में चले जाते हैं और वहां पर अपना कार्य करते हैं और वो अपने अपने धामों में उसी प्रकार चले जाते हैं जिस प्रकार इस संसार में भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया और फिर अपनी इच्छा से उसको दूर करके वापस अपने चतुर्भुजी और पुनः अपने दो भुज भगवान के स्वरूप में आ गए थे। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक बात बता रहे हैं कि अब युधिष्ठिर महाराज को ये ज्ञान था कि भगवान साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान साक्षात भगवान है, तो उनके जाने का शोक नहीं, लेकिन क्योंकि मित्र थे अब मित्र के जाने का तो शोक होना, लेकिन उनको ये नहीं था कि भगवान की मृत्यु हो गई है, लेकिन उनको ये था कि कृष्ण जो हमारी संरक्षण, सबसे बड़ी सुरक्षा हमें प्रदान करते थे, वो अब इस भौतिक जगत में नहीं है, तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, तो वो तो स्वाभाविक है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।